श्यावर राम चंद्र की जय। मोर मुक्त बंसी वाले की भाव की बात चल रही थी, तो भाव तो थारे लोगों को भी कभी कभी हो, ठहर हुई भाव यदि बदल गया मैंने इसको, तो फिर देरी क्या है। काम करने के समय के बीच के मां मैं कभी कभी शिवदयाल को भाव देखते तो बहुत ही अच्छे मन मालूम देते हो, प्रसन्नता से काम करते हो, कभी आंखों में आंसू पात देखते हो, जरा मैं पूछो की बात है ना, बोले इस तरह से अरसे गया था साथ में ना, बोले इसी के मां जो बातें हुई थी मैं भाव से काम करने की आप गई ना, उस तरह से जैसे काम करने से इस माफक भाव हो गया, बड़ी उत्तम बात है। श्याम भी एक प्रकार से कहा करते थे, भूकंप के समय में कुआ एक से खुदना वो काम का वक्त है, मेरे भाव बहुत अच्छे हो रहे थे। बिलासपुर में भी अब कहें गया तो कहता भी बिलासपुर में भी भाव सो ठीक रहे, तो मैंने दूसरे की पंचायती को भी काम करा करता तब। तो काम करने के समय के बीच के में जो भाव है जी वो बहुत उच्च कोटि को रहना चाहिए। जैसे पहला सुनी हुई बात है कि आपने गंगा बाबू और सुखदेव जी आपने काम करता तो समय समय में वो भाव बहुत अच्छे होया कर रहे हो, तो जो आदमी को एक दफा भाव ज्यादा ने याद करके केवल स्वभाव बना ले हुए कोई कठिन बात ऐसी नहीं। मारे तो दूसरे को भी अच्छे भाव देखा और दूसरे की अच्छी मुद्रा और भाव देखी हुए तो मैंने देखे मैं तो बहुत लाभ उठा ले वहां, और मारो निजको कोई मत में अच्छे भाव हुए वैसे तो काम लेने में कठिन बात है ही नहीं, और जो कुछ हो सो भाव ही है। यह संसार जो है सो दुख रूप है, यो भी भाव ही है। इस संसार में दुख रूप समझने से या दुख रूप प्रतीत तो लग जावे, और इस संसार में भोग रूप समझने से भोग रूप प्रतीत तो लग जावे, और इस संसार में परमात्मा को रूप समझे तो परमात्मा के रूप में यह दिखने लग जावे, ये भाव ही है। एक स्त्री है, मैं को जो लड़को है छोटो बच्चो 2 साल को, वो माता का स्तनपान करे। एक स्तन में पान कर रहे है, दूसरे स्तन में अपने हाथ से पकड़ रखे, ऐसी बात प्राय बालकों में देखी जा रही। या हो सके बच्चे के दिल में कि भाई ये तो मैं पान करूं इसके बाद इन्हें पान करूंगा, कोई दूसरों नहीं पान कर ले, यह अनुमान लगाई जा रहे। अलवा को जो पति है वो भी उस स्तन पर हाथ रखे तो भाव को ही फर्क है, लेकिन वो तो दूसरा ही भाव है, अलवा के पति को दूसरा ही भाव है। स्त्री को कभी मिलने के लिए पिता भी आए, वो भी एक प्रकार से अपने रेगे लगा करके मिले कोई वक्त में, ऐसी घटना भी होया करे, तो वो भी मेरे को एक भाव है, पिता को भी एक भाव, तीसरा भी भाव है। तो वही स्थाना को सफर से समझो कि हरेक प्रकार से हुए है, और उनका सबका अलग अलग भाव है, और वे सभी पुरुष है और सबके लिए वास्तविक है, किन्तु भाव के के परिचय कारण से थी, देखे अपन तो फल हो जावे। पद्म पुराण के बीच के माँ सजन अध्रुव को प्रकरण आवे है, उस प्रकरण के बीच के माँ रात्रि के समय वे की जो स्त्री है वैसे भी मेरे को स्पर्श हुए तो उससे काम भी पहनो है। साथ के वही राजकुमार की स्त्री जो उसके विश्वास पर छोड़ गयी तो वैसे भी स्पर्श हुआ है, तो ऐसी प्रतीत रहे कि मानो मैं अपनी माता के साथ में स्पर्श कर रही हूँ। तो मेरे को जो भीतर में जो काम है जो कोई प्रकार से उत्पन्न हो तो दूर रहो, ऐसा कि काम की वृत्ति तो शांत हो जाए। दोनों स्त्रियां हैं, भाव को कितना फर्क है। ख्याल ये करना चाहिए कि जो कुछ उसको भाव ही है, रात्रि के समय के बीच में जो स्वप्न के मापन संसार जो दिख रही है वह क्या चीज है, भाव ही है। कोई वास्तव में स्वप्न के काल में कोई संसार तो कोई है ही नहीं, संसार आवे भी कहां से हुआ, बिल्कुल संसार को किंचित मात्र भी समझ नहीं है। संसार को वहां अत्यंत भाव है, केवल आपने भाव भाव ही अपना कल्पना कल्पना ही अपनी है। तो यह बात देखी जावे है कि एक ही मनुष्य जिसने वो समझो कि साधारण भाव से वो देख रहे है तो वो साधारण रूप में दिख रहे है, और विशेष भाव से देख रहे है तो वो ही पुरुष विशेष भाव से दिख रहे है। वो ही पुरुष एक समय के बीच के वहां महात्मा दिख रहे है, और वो ही पुरुष एक समय के वहां साधारण दिख रहे भाई एक आदमी ने। तो जो प्रत्यक्ष में भाव को ही तो फर्क है ना। तो इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी था, भगवान श्री राम थे, तो भगवान श्री राम एक ही थे। धनुष यज्ञ के बीच के वहां भगवान राम को सब कोई अपने अपने भाव से समझो कि देख रहे हैं, सबके लिए भगवान एक नहीं है, एक होते हुए भी। तुलसीदास जी कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी, कि जय की जैसी भावना रही भगवान के रूप में वो उसी रूप में देखने लगो। और यही भागवत के सम्मा भी दसवें स्कंद में भगवान धनुष यज्ञ में जब गया है तो उस दिन के वहां कंस के राजधानी के वहां एक प्रकार से, और वहां समझो की बल्लों के साथ में युद्ध होने की तैयारी हो रही है, उस समय में भी सब लोग भगवान को अपने अपने भाव से देख रहे हैं। ठीक तुलसीदास जी ने जो बात कही है धनुष यज्ञ के विषय की, वही बात एक प्रकार से समझो की धनुष यज्ञ के विषय की वहां दिखलाई गई है, और वही बात एक प्रकार से वर्तमान के बीच के माँ आप ख्याल करके देखो तो वही बात एकदम प्रत्यक्ष प्रतीत हो रही है। किसी भी मनुष्य के माँ आप घटा लो, स्त्री में घटा लो, पुरुष में घटा लो, चाहे ईश्वर में घटा लो, चाहे संसार में घटा लो, अपनी भावना के अनुसार यह संसार से दिख रही है। ईश्वर की सृष्टि के बीच के माँ तो संसार को एक ही रूप है, किंतु देखने वाले पुरुषों को वो नाना रूप में क्यों दिख रही है। तो नाना रूप में जो संसार में जो मनुष्य देख रहे हैं जो एक अपना भाव एक प्रकार से अपना अपना भाव से वो दिख रही है, तो भावमय सृष्टि है वो जीव की सृष्टि है, और वास्तव में जो सृष्टि है वो ईश्वर की सृष्टि है। तो वो जीव को भाव है, ईश्वर को भाव है। तो भगवान को जो संकल्प भी है संसार, तो भगवान को स्वरूप ही हो। अपनों जो जो संकल्प है स्वप्न अवस्था के वहां तो वो अपनो स्वरूप ही हो। तो जो भगवान को ही स्वरूप है तो इस संसार में भगवत भाव से देखनी चाहिए, इस श्लोक के आधार के ऊपर। ये श्लोक बहुत उत्तम है कि बहुनाम जनानाम अंते ज्ञानवान मान प्रवद्यते வாசுதேவ சர்வமிதி ஸ்வமாத்மா சுதுர்லப அத்தியாயம் 7 ஸ்லோக் 19. இஸ்கா யே பாவ ஹை கி பூத ஜன்மோ கே அந்த கே ஜன்ம மே பகுனாம் ஜமுனா மானே பூத ஜன்மோ கே அந்த மே யோ பி அர்த்த மிலே பூத ஜன்மோ கே அந்த கே ஜன்ம மே யோ பாவ பி அப்னே சே நிகலே ஜானவான் மான் பிரபுத்தி ஜானவான் ஜோ ஹை சோ முஜ்கோ ஹஸ்தா ஹை इस प्रकार से थी कि वासुदेव सर्वविधि जो कुछ वासुदेव है इति माने इस प्रकार वह ज्ञानवान कैसा है कि वह दुर्लभ महात्मा है तो संसार के बीच के माना महात्मा तो दुर्लभ है ही और वह सुदुर्लभ कह दिया कि अतिशय दुर्लभ ऐसा महात्मा तो मिलना ही मुश्किल है कि जिनका ऐसा भाव हो तो ये भाव तो कर्ता पर निर्भर करे तो इसलिए अपना ऐसा ही भाव करना चाहिए कि जो कुछ हो सब परमात्मा को ही स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी भागवत के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध में लिखा है कि ग्वाल बालों की और समझो की बच्चों की रचना कर ली और उस समय के बीच के वहां समझो कि एक दिन उन ग्वाल बाल और बछड़ों को समझो कि उन्होंने अद्भुत प्रेम दे करके बलदेव जी ध्यान लगा कर देखा तो उनको सब भगवान कृष्ण ही कृष्ण दिखने लगे। तो पूछा कि कन्हैया यह क्या बात है, ये प्रकाश है कि बछड़े और ग्वाल बाल मुझको तेरा ही रूप दिखता है, तो ये क्या बात है। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने वो जो रहस्य की बात थी, छिपी हुई बात जो कोई भी नहीं जानता भगवान कृष्ण की, वो बात बतला दी कि बात यह है कि ब्रह्मा जी जो है वे मेरी परीक्षा ले रहे हैं और परीक्षा लेने के उद्देश्य से ग्वाल बाल और बच्चों को सबको चुरा करके ले गई। तो मैंने स्वयं ही अनेक रूप धारण कर लिए, मैं ग्वाल बाल और बच्चों के रूप में आजकल ये बाल लीला कर रहा हूं। तो बलदेव जी इस बात को समझ गए, बलदेव जी समझ गए तो फिर बलदेव जी तो एक प्रकार से ध्यानावस्था में ऐसी बात देखी, भगवान कृष्ण जी ने ये बात कह दी, तब तो फिर बात ही क्या ही। फिर तो बलदेव जी समझो कि सब ग्वाल बाल और बछड़ों को भगवान के रूप में देखा करते थे। तो जैसे बलदेव जी ने भगवान बात कह दी, ऐसे अपने भी मान लो कि अपने भी कह दी। कैसे कि गीता जो है सो अर्जुन को निमित्त बना करके सारी संसार के लिए कही है और जो मानव के लिए कही है, तो अपन भी संसार के माया आपा भी अपने लिए इसमें मान सका। क्योंकि जो भगवान कहते हैं कि ऐसा जो महात्मा बड़ा दुर्लभ है तो अपना तो दुर्लभ महात्मा ही बनना चाहिए, और उसके लिए ये कहा कि भाई ये बहुनाम जमुना मंगते ज्ञानवान मान प्रबद्धते वासुदेव सुर्य महात्मा सुदुर्लभ है। तो भगवान का जो कहना है निश्चय है, और महापुरुषों का जो अनुभव है और वह जिस प्रकार से अनुभव करते हैं वही तो बात ठीक है। हम लोग साधारण आदमियों की जो बात का क्या मूल्य है, भगवान के भाव की तरफ ख्याल करना चाहिए, महापुरुषों के भाव की तरफ ख्याल करना चाहिए। तो महापुरुषों की दृष्टि है वही असली दृष्टि है। तो महापुरुषों की दृष्टि में तो जो कुछ सब वासुदेव ही है, एक परमात्मा ही है। तो इस प्रकार से समझ करके हम लोगों को क्षण क्षण के बीच के माँ खूब ऐसा मुग्ध होना चाहिए, क्षण क्षण के बीच के माँ हम लोगों को मुग्ध होना चाहिए। तो हर वक्त हम एक प्रकार से संसार को परमात्मा के रूप में देखें और ऐसे मुग्ध हुए। साधन भी समय समय पर बतलाया जाकर है कि बस इत इतनी बात आपने समझ में आ जावे कि ये आपने जो कुछ है सो भगवान को ही स्वरूप है, हम ये समझ लेवे कि भगवान कहते कि भोगतारंग यज्ञ तपसा, यज्ञ और तपों का भोगता मैं ही हूँ। तो एक प्रकार से हम जितने प्रकार के यज्ञ करते हैं समझो कि इसी भाव से करें कि भगवान ही भोगता है, तो कितनी सुंदर बात है। हम अग्नि में आहुति डालें और ये भाव कर लें कि स्वयं भगवान ही अग्नि रूप में प्रकट होकर के हमारी आहुतियों को ले रहे हैं, हमारे घर पर अतिथि आवे हम उसको साक्षात नारायण समझ करके उसे की सेवा करें तो कितना हमको मुफ्त में लाभ मिल जावे। और वेदों का भी वचन मिलता है, गीता का भी वचन मिलता है, वेद भगवान कहते हैं कि अतिथि देव भव, अतिथि को तो देव माने साक्षात परमात्मा का सुख समझने वाला बन। लड़कों को भी कहते हैं कि भाई माता पिता आचार्य को तो साक्षात ईश्वर का सुख मानने वाला हो, मानने से उसको ईश्वर की प्राप्ति भी हो जाती है उसके भाव के अनुसार। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि जो कुछ सो भाव ही है, भाव की कमी है। अपनी धर्म पत्नी पतिव्रता के भाव से थी अपने पति को समझो कि इस रूप से देखे तो मैंने ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। बहुत से उदाहरण भी मिलते हैं और शास्त्र भी कहता है कि अपने भाव की कमी है। जब कंवर जी को शरीर मौजूद हो तो मैं बात चलती कोई समय में तो ऐसे ख्याल वाले भाई दाने ने कह तो कि आपने बाजार परमेश्वर का समान समझ के उनकी सेवा की जाए तो इनको भाव हो तो नहीं, मतलब के उपाय हुए भाव होते तो कितना शुभ उपाय थो, अरे अब उसकी अपेक्षा कितना कठिन उपाय। तो जो स्त्री जिनको पति जीवित है उनके लिए तो ये मार्ग बहुत ही सुगम है। कल प्रातः काल ये बात बतलाई थी, वो अपने पति को साक्षात ईश्वर के समान समझ करके उनकी सेवा करे तो ईश्वर की एक प्रकार से सेवा के समान होना प्रत्यक्ष में लाभ हुए। पति चाहे कैसो ही क्यों नहीं हो उसकी कोई बात नहीं, और यह बात शास्त्र के ही भी नहीं कि भी उत्तम गुण पति में हो तो ही सेवा करनी चाहिए। अरे के बीच में उत्तम गुण नहीं हो, नालायक हो तो एक प्रकार से देखो अपमान करना चाहिए। यह बात कठी आपको शास्त्र में नहीं मिली, और ख्याल करके के देखना चाहिए कि कितना सुगम रस्तो है। इसी प्रकार से थी जो गुरु है, जो महात्मा है, जो समझो कि भगवान के भक्त हैं, भगवान के जो भक्त हैं उनके बीच के वहाँ अपने उत्तम भावना तो स्वाभाविक होनी चाहिए, किंतु जो अपने गुरु के पद पर है और आचरण उनके बढ़िया नहीं है, ऐसे पुरुष के बीच के वहाँ भी उत्तम भावना करने से, गुरु भावना करने से, ईश्वर भावना करने से, गुरु ऐसो साक्षात ईश्वर ऐसी भावना करने से उसको भी कल्याण हो जाए, ऐसी बातें शास्त्रों में आती। और ये बात युक्ति संगत भी मालूम देती तो अपनों भावी प्रधान है, उनका जो आचरण है वो तो उनके लिए कल्याण करने वाले हैं। उत्तम आचरण यदि मेरा है तो मेरे लिए कल्याण करने वाले हैं, मेरा बुरा भाव है तो मेरे को पतन करने वाले हैं। दूसरों के लिए तो अपने भाव से संबंध रहे तो अपना भाव एक प्रकार से उत्तम करना चाहिए। अपना भाव तो सब में उत्तम करना चाहिए, खराब भाव किसी में भी नहीं करना चाहिए। जब एक विचार के द्वारा एक समझो कि कुत्ते के बीच के माँ भगवत बुद्धि हो सकती है, एक चंडाल के माँ भगवत बुद्धि हो सकती है, राजा रंती देव जिस प्रकार से थी कुत्तों को भी भोजन करवा रहे हैं, एक प्रकार से कोई प्रकार का उसके चित्त में कोई विकार नहीं, अपना कर्तव्य का ही मानव पालन कर रहा हूँ, इसी प्रकार से थी हम लोग भी समझो कि बलिष्ठ कर करके उस अन्न को कागड़ों को देते हैं, कुत्तों को देते हैं, गायों को देते हैं, तो उन सब के वहां भी हम लोगों की भगवत बुद्धि हो जाए तो हमारे लिए वो वास्तव में महायज्ञ बन जा। कितने संसार के वहां द्रव्य करते हैं, कितने तप्य करते हैं, कितने योग ये करते हैं, और वे सभी यज्ञ करने वाले यज्ञ से बचे हुए समझो कि अमृत को भोजन करके सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। संतो मोचनते सर्व के लिए भी सही, और संतो यक्षिष्ठा भूलो यान्ति ब्रह्म सनातनम, तो दोनों जगह ये बात दिख रही। तो गीता की तीसरे अध्याय के 13 के श्लोक के वहां ये बात दिख रही कि यक्ष से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत पुरुष समझो की सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और यहाँ इस यज्ञों के प्रकरण के बीच में 4 अध्याय के वहां यज्ञों की व्याख्या करके उसका परिणाम बतलाते हैं कि ये शिष्टा मृत पूजो यान्ति ब्रह्म सनातन, यक्ष बचे हुए अमृत का पान करने वाले वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। और इस प्रकार के यज्ञ करने वाले सभी यज्ञ मानी यज्ञ तत्व को जानने वाले हैं, ये नहीं कि वे जितने प्रकार के जो साधक बन रहे हैं उनके माँ कोई निम्न श्रेणी का है, सभी एक प्रकार से उत्तम है और सभी एक प्रकार से सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। उसमें किसी के लिए ये नहीं कहा कि ये बात पड़ जाता है, जब ये सभी यज्ञ करने वाले सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं तो उनके माँ भावी प्रधान है। एक आदमी समझो कि यज्ञ करता है वो एक प्रकार से अश्रद्धा से करता है तो उसके यज्ञ की क्या संज्ञा है कि असत है, असत्य उसका यज्ञ है, वास्तव में नहीं है। अश्रद्धा उत्तम गतम तपस्तम करतम सहित असदित उच्चते पार्थ न सतत प्रयत्न हे पार्थ, समझो कि बिना श्रद्धा के अश्रद्धा उत्तम गतम बिना श्रद्धा के घुमा हुआ हवन माने और दिया हुआ दान और छुपाया हुआ तप और किया हुआ कर्म सभी असत्य है, न उसका फल इस लोक में और न मरने के बाद उसका फल कहीं नहीं है, वो एक प्रकार से मिथ्या है। और वही जगह यदि एक प्रकार से थी अपने शत्रु को मारने के उद्देश्य से किया जाता है, उसमें ये उद्देश्य रखा जाता है उसी जग के बीच के माँ उसी कर्म के बीच में उसी तपस्या के बीच के माँ कि ये तपस्या मैं क्यों कर रहा हूँ कि अपने शत्रु को मारने के लिए, शत्रु के दिल में उच्चाटन पैदा करने के लिए, उसको भस्म करने के लिए, तो वो तामसी हो जाता है, उसका फल कर्ता को क्या मिलता है कि नर्क मिलता है। और वही जग एक प्रकार से सहकाम भाव से किया जावे पुत्र के लिए धन के उद्देश्य से, समझो की संकट की निवृत्ति के उद्देश्य से, तो वही जग एक प्रकार से थी समझो की राशि बन जाता है, सकाम बन जाता है, पहला वो तामसी बन जाता है वो राशि बन जाता है। इसी प्रकार से जो अपना कर्तव्य समझ करके उसी जग को निष्काम भाव से करे, क्रिया का कोई फर्क नहीं, उसी जग के बीच के वहां निष्काम भाव हो जावे तो मुक्ति के देने वाला हो जावे। शुरू में सहकाम भाव है और फिर आगे जाकर के निष्काम हो जावे या भगवतर्थ हो जावे, भगवतर्पण हो जावे, तो वही जग भगवान की प्राप्ति को देने वाला बन जावे। इसमें कोई फर्क नहीं है, केवल भाव का ही फर्क है। तो ये समझना चाहिए कि संसार में जो कुछ है सो भाव, इस बात को ख्याल में रख करके अपना जो भाव है उच्च से उच्च बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। तो ये भाव की बात आपको संक्षेप से कही। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ஆனந்தம் புதுசுவான் கனசுவான் ஆனந்தி ஆனந்தம்.